हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी लव स्टोरी पेश कर रही हूँ जो कि हिंदी ट्रांसलेशन है जैक एंड जेनी फेल इन लव का। आशा है आप इसे भी उतना ही प्यार और भावना से सराहेंगे जैसे आपने जैक एंड जेनी की मोहब्बत को सराहा था। इस कहानी का शीर्षक है जन्नत में मोहब्बत इजहार। हिमांश अपने माता पिता का एक लौता बेटा था जो उनके साथ शिमला के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता निम्न वर्गीय किसान थे जो अपनी जीविका से बड़े ही संघर्ष और कठिनाई से के साथ अपने परिवार का पेट पालते थे। फिर भी हिमांश के माता पिता ने उनके बेटे का लालन पालन बड़े ही खूबसूरत व संस्कार देकर किया। जिस गांव में वह रहता था वहाँ सुख सुविधा एवं शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा का अभाव था। वहाँ नाम के लिए 10वीं तक की एक ही छोटी सी पाठशाला थी जिसमें मुश्किल से कुछ ही छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए हंसते हंसते अपनी सारी परेशानियों को झेला। अपना पेट काट काट कर भूखा रह रह कर हिमांश को शहर की पाठशाला में फीस देकर दाखिल करवाया ताकि वे वहाँ जाकर उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर पाए और अपने सपनों को साकार कर पाए। इस कारणवश हिमांश को किशोर अवस्था में ही अपने माता पिता को अकेले छोड़ शहर जाना पड़ा। बचपन से ही दिल से संवेदनशील हिमांश अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने माता पिता से दूर हो गया। वह अपने माता पिता द्वारा किए गए संघर्ष व त्याग की कीमत को अच्छी तरह समझता था। उसने अपने मन में यह संकल्प लिया कि वह उनके त्याग व संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देगा और एक दिन जीवन में सफलता के शिखर पर पहुँचेगा, उन्हें वह सुख सुविधा हासिल कराएगा जिनसे वे आज तक महरूम थे और उनका सर गर्व से ऊंचा करेगा। उसका कठिन परिश्रम और उसके माता पिता की दुआ आखिर रंग लाई। वह अपनी पाठशाला में सबसे अधिक अंक लेकर पास होने वाला छात्र बना जिसके लिए उसे परीक्षा में और पाठशाला में सम्मानित भी किया गया। हिमांश की पढ़ाई पूरी होते ही उसे लंदन में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आया। इसके लिए उसे भारत छोड़ लंदन जाना पड़ रहा था। हिमांश को लंदन भेजते समय उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ साथ चिंता का भाव भी साफ देखा जा सकता था। हो भी क्यों ना, उनका जिगर का टुकड़ा, उनका इकलौता बेटा अपने नए जीवन की शुरुआत करते उन्हें छोड़ सात समंदर पार हो जा रहा था। भविष्य से अनजान हिमांश की जिंदगी विदेश में ऐसा मोड़ लेगी जिसका उसे इल्म भी ना था। विदेश में उसकी एक ऐसी लड़की से मुलाकात होती है जो बहुत ही खूबसूरत और परियों जैसी देखने में व्यतीत होती है, जिसे देखते ही हिमांश के मन में प्यार के गुल खिलने लगे थे। वह बस हर पल हिमानी के बारे में ही सोचता रहता। उसके ख्यालों में खोकर वह इस कदर मुस्कुराता जैसे कोई फूल अभी अभी खिला हो। उसकी रातों की नींद खो चुकी थी, उसके दिन के चैन पर भी हिमानी की ही यादों का पहरा था। जब वह ऑफिस आती तो हिमांशु उसे रिझाने के नए नए तरीके सोचता, उसकी हर तरीके से मदद करता और उसे बस अपने जीवन में शामिल करने के अरमान ही रखता। ये सब देखकर कहना गलत नहीं था कि उसे हिमानी से पहली नज़र में सच्चा प्रेम हो चुका था। कुछ समय बाद हिमानी भी उसे दोस्त की तरह पसंद करने लगी थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते थे, बाहर घूमने जाते थे, हंसते खिलखिलाते थे। हिमांश तो उसे अपने दोस्त से ज़्यादा ही मानता था, उसे अपनी महबूबा जो बनाना चाहता था। फिर एक दिन देखकर हिमानी को एक ऐसी जगह ले गया जो हिमांश के लिए एक जन्नत से कम नहीं थी। वहाँ पंछी सुर में गा रहे थे, भंवरे गुनगुना रहे थे, फूलों की खुशबूएं लुटा रही थी हवा, और हिमांश के साथ थी हिमानी, उसकी दिलरुबा। इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वह घुटनों पर बैठा और हिमानी को से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। कुछ इन सब शब्दों में हिमानी से उसने कहा, जब से तुम्हें देखा है ना सोते हैं ना जागते हैं, जब से तुम्हें देखा है ना सोते हैं ना जागते हैं, बस तुम्हारे ख्यालों में रहकर अपना दिल गुजारते हैं। क्या तुम मेरे प्यार की कहानी बनोगी, मुझसे शादी कर मेरे दिल की रानी बनोगी? रानी ये सब सुनकर चौंक गई, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो हिमांश को सिर्फ अपना एक दोस्त मानती थी। वो बोली, मैंने तुम में एक बहुत अच्छा दोस्त देखा है, जीवन साथी नहीं। मैं लंदन की अमीर घर की बेटी, तुम शिमला के गरीब घर के बेटे, हमारा कोई मेल नहीं। यह सब सुनकर हिमांश टूटकर बिखर गया। दिल चकनाचूर हो गया। उसके जहन में एक ही कविता की कुछ पंक्तियां आई और बोला, हमें खोकर तुम यूं तड़पा करोगे, बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से हमारे सपने देखा करोगे। हिमानी उस वक्त नाटकीय मनोदशा में नहीं थी। वह हिमांश को तनहा छोड़कर वहां से चली गई। वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। हिमांश को संभालने वाला वहां कोई भी ना था। फिर अगली ही सुबह उठकर वह ऑफिस गया, जहाँ वह हिमानी से फिर टकराया। परंतु उसने अपने दर्द का एहसास हिमानी को नहीं होने दिया। वह फिर से अपने माता पिता के सपनों के लिए जीने लगा। हिमानी से भी वह अपनी दोस्ती पूरे दिल से निभाने लगा। उसकी हर मोड़ पर मदद करता, उसके लिए मुश्किल में खड़ा रहता। ये सब देखकर एक दिन ऐसा भी आया, हिमानी को हिमांश से प्यार हो गया। वह समझ गई कि प्यार में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीबी कुछ मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो एक खूबसूरत दिल और प्यार करने वाला एहसास, जो इस वक्त हिमांश के दिल के अलावा उसे कहीं नहीं मिला। तो वह हिमांश को अगले दिन वहाँ लेकर गई जहाँ कभी हिमांश उसे लेकर गया था। इस बार वो अपने घुटनों पर बैठी, हिमांश का हाथ पकड़ा और बोली, क्या तुम मेरे प्यार की कहानी बनोगे, मुझसे शादी कर मेरे दिल के राजा नहीं, क्या तुम मेरी जिंदगानी बनोगे? ये सब सुनकर हिमांश की खुशी का ठिकाना ना था। वह खुशी से झूम उठा खड़ा हुआ, खिमानी के माथे को चूमा और उसे गोद में लेकर चूमने लगा। समय बीता, हिमांश और हिमानी की जॉब में प्रमोशन हुई। उन्होंने फिर शादी के अटूट बंधन में बंधने का फैसला लिया, जिसके लिए वह दोनों हिमांश के माता पिता से मंजूरी लेने भारत उसके गांव शिमला वापस गए। हिमांश के माता पिता का आशीर्वाद पाते समय हिमांश ने अपने दिल के राज अपने माता पिता के सामने जाहिर कर दिए। उसने हिमानी से अपने माता पिता को मिलवाया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है और उनका आशीर्वाद उसके साथ सदा रहे, यही उसकी अभिलाषा है। अपनी भाव हिमांश के अपने बेटे की भावनाओं को सुनकर हिमांश के माता पिता ने उसकी खुशी के लिए खुश होकर शादी की मंजूरी दे दी, परंतु गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। गांव वाले इस विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी संस्कृति में प्रेम विवाह करना सही नहीं माना जाता था, जिसको लेकर हिमांश के परिवार को पंचायत ने देश निकाला का आदेश दे दिया और कहा कि वह यह गांव छोड़कर चले जाएं। हिमांश और हिमानी ने इस परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। वे एकजुट होकर सब गांव वालों के पास गए और उनकी धारणा बदल डाली। फिर एक दिन उन्होंने गांव वालों और माता पिता के आशीर्वाद के साथ शादी की और अटूट बंधन में बंध गए।